ओम शांति। बाबा के मधुबन घर में अच्छा लग रहा है? हाँ, बॉम्बे तो नहीं याद आ रहा है? हाँ, इस तपोभूमि में तपस्या करने का मौका ये भी कभी कभी मिलता है। और उसमें भी शीतल वातावरण, प्रकृति भी सुंदर, मधुबन के वायुमंडल में भी नेचुरल बाबा बाबा होता रहता है, है? ऐसे वातावरण में हमारा नेचुरल योगी बनना अनुभव होता है, है ना? याद के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। और हम सब जानते हैं कि अब समय अनुसार शक्तिशाली हमारी योग अवस्था ही आवश्यक है। सत्य ज्ञान तो बाबा ने हमें दे दिया, भक्ति का फल सत्य ज्ञान। बाबा ने हर बात समझा दी, विस्तार से समझाई, बहुत गहराई भी बताई और नए 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 तरीके से वो सारे ही मूल सत्य हमें पक्के कराए। आज भी बाबा ने क्या कहा, एकांत में बैठकर बाबा को याद करके दैवी गुण धारण करो और चेक करो कितने दैवी गुण आए हैं। पढ़ाई हमारी यथार्थ हो रही है उसकी निशानी है हमारे में क्वालिटीज आती जाएंगी। जैसे दुनिया में जो यथार्थ पढ़ेगा वो क्वालिफिकेशन प्राप्त करेगा, एक के बाद एक डिग्री प्राप्त करता जाएगा। हम बाबा का ज्ञान योग अच्छी तरह कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल सबूत क्या है? दिव्य गुण हमारे में क्वालिटीज आती जाएगी, क्योंकि ज्ञान ही गुण बनता है। ज्ञान है समझ, और जब हम वो समझ धारण करते हैं तो वो गुण में परिवर्तन होने लगता है। बच्चा छोटा है तो जो कुछ मिलेगा खुद ही खा पी के मौज करेगा, है ना? पर वही बच्चा बड़ा होता है, समझ आती है, तो सब कुछ खुद नहीं खाएगा, शेयर करेगा। जिम्मेवारी समझते हैं तो ऑटोमेटिक ये गुण आते हैं। तो हम भी ज्ञान समझते हैं तो गुणों का विकास होता है। और प्रैक्टिकल जीवन में कैसी भी परिस्थितियों में गुणों की धारणा अगर हम दृढ़ रखते हैं, बदल नहीं जाते हैं, तो वो गुण शक्ति बनने लगता है। वो गुण फिर शक्ति बन जाता है। शांति का गुण शांति की शक्ति बन जाता है। तो बाबा हमें संगम युग में जो वर्षा देता है वो है ज्ञान, गुण और शक्ति। और जब ज्ञान, गुण और शक्ति से हम सज्ज हैं, भरपूर हैं, तो फिर जीवन की, संसार की कोई भी बात हमें हिला नहीं सकते। हमें विषय दिया गया है बेफिकर बादशाह, स्थिति माना अचल अडोल स्थिति। अचल अडोल स्थिति ये टॉपिक ही हमें बताता है कि बातें तो जीवन में आएंगी, क्यों आएंगी क्यों आएंगी। सतयुग में बातें नहीं आती है और अभी आती है, क्यों आती है हिसाब किताब। परिस्थिति क्यों आती है ना, क्योंकि हमारा कोई न कोई हिसाब किताब बना हुआ बाकी है, चुक तो नहीं हुआ है ना। फिर वो प्रकृति के साथ, प्रकृति माना पशु पंछी प्रकृति सब आ जाता है, या आत्माओं के साथ। हमारे सामने जो परिस्थिति आती है बिगर कारण नहीं आती, पहले तो हम ये समझ लें। अक्सर जब भी परिस्थिति आती है, बीमारी आई, कोई डेथ हो गया, कोई लॉस हो गया, कुछ झगड़ा, कुछ भी मतलब परिस्थिति आती है, एक तो बिगर कारण नहीं आती है, हमारे ही सामने क्यों आती। अक्सर कईयों का ये प्रश्न होता है ना, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, बाकी सब मौज कर रहे हैं, मेरे ही साथ ऐसी बातें क्यों होती। पर हम कहते हैं कि आप खुद ही सोचिए कि औरों के साथ नहीं आती है, मेरे साथ ही क्यों आई, तो जरूर मेरा कोई हिसाब किताब है, कोई मैंने कर्मिक अकाउंट पहले बनाया हुआ है, तभी मेरे साथ आता है बात। मान लो एक व्यक्ति मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं करता, औरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। कई बार हम कहते हैं ना कि दूसरे कहते हैं तो मानते हैं, मैं कहती हूँ घर में तो मानते नहीं, अगर वो व्यक्ति खराब होता तो किसी की भी नहीं मानता ना, वो सबके साथ ऐसा ही करता। मान लो वो व्यक्ति है ही ऐसा तो फिर सबके साथ ऐसा करता है, पर मेरे साथ ही करता है, मीन्स मेरे साथ हिसाब है, दूसरे से नहीं कर रहा है। तो जीवन में कोई भी परिस्थिति बिगर कारण नहीं आती। हमारा अपना कोई उधार है, कर्मिक अकाउंट हमारा बना है, तब वो बात आती है। तो बाबा ने जो ये बात समझाई है, इससे जो हम दूसरों को दोषित करते हैं ना कई बार, वो खत्म हो जाता है। इसके कारण मुसीबत आई है, इसके कारण ही ये सारा हुआ है, उसी का काम है, मैं जानती हूं ना वही होगा करके किसी ना किसी को हम ब्लेम करते हैं। पर बाबा का ज्ञान हमें क्या समझाता है कि बिगर कारण नहीं आता। ड्रामा क्या है? एक्यूरेट है, एक्यूरेट यथार्थ है। ऐसा नहीं है कोई ऑल ऑफ सडन ऐसे वैसे ही चल रहा है, बहुत व्यवस्थित ड्रामा है। आज दुनिया में भी कोई फिल्म बनाएगा, डायरेक्टर कोई अच्छा फिल्म डायरेक्ट करेगा, जो अच्छा डायरेक्टर है वो तो अच्छे से अच्छा करेगा, वो फिल्म बनाएगा तो अच्छे से अच्छी बनाएगा। कोई कारण ही ना हो ऐसी बातें उस फिल्म में थोड़ी होगी, जो उसका टाइटल है, थीम है, उसके अनुरूप ही बातें होंगी। तो इस वर्ल्ड ड्रामा का डायरेक्टर कौन है? बाबा है ना। अच्छा, संगम युग का ड्रामा तो बाबा ने बनाया है ना, रचाया है ना। तो ऐसा वैसा थोड़ी होगा, है ना, एक्यूरेट होगा ना। कई बार हम सोचते हैं ना, अभी होना था, ऐसे ही होना था, मुझे जाना था और उसी टाइम ये हुआ, है ना। परंतु नहीं, सब एक्यूरेट है। हमें ज्यादा सोचना नहीं, हमें विश्वास रखना है और उस सत्य को समझना है कि ड्रामा एक्यूरेट है। कर्म के सिद्धांत पर ये ड्रामा चलता है, और कर्म का सिद्धांत अचल अडोल है, एक्यूरेट है। इसमें कोई अन्याय नहीं, कोई पक्षपात नहीं। इसमें कोई पक्षपात नहीं, भगवान का भी कोई इंटरफियरेंस। इस कर्म क्षेत्र पर भगवान आते हैं तो वे भी कर्म के सिद्धांत अनुसार चलते हैं। तो जब ये ज्ञान है तो ऑटोमेटिक 50% मन की हलचल खत्म हो जाएगी। क्यों हुआ, क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, देखो क्या क्या हुआ, ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाबा ने पहले से हमें बता दिया। दुनिया में लोगों के सामने कोई भी परिस्थिति आती है, उनको पता नहीं है, उनके पास कोई ये ज्ञान नहीं है, है? वो हिल जाते हैं, घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, उनको प्रश्न उठते हैं, ऐसा क्यों हुआ, शॉक लगता है ना, असर हो जाती है, तबीयत खराब हो जाएगी, कोई का मन खराब हो जाएगा, होता है ना, कि ये क्या हुआ हमारे जीवन। पर बाबा ने हमें इस वर्ल्ड ड्रामा का ज्ञान दिया है और बाबा ने हमें कहा है कि ये अंत का समय है, इसलिए रहे सहे, बचे खुचे, इस जन्म के कोई भी जन्म के बाकी रहे हुए हिसाब किताब अभी ही चुकतो होते है। जो 84 जन्मों से अकाउंट चलता आया है ना, जैसे दुनिया में सारा वर्ष बैंक में हिसाब किताब बैक फॉरवर्ड होता रहता है ना, कि भाई आपने इतना जमा किया था, इतना उधार है, तो उस हिसाब से वो अगले मास में बैक फॉरवर्ड होता है। पर एनुअल अकाउंट मार्च एंड में आता है तो सारा क्लियर होता है ना हिसाब, तो ये भी पूरे 5000 वर्ष का, 84 जन्मों का फाइनल क्लियरेंस का टाइम है। हा? बाबा कहते हैं ना, वापस घर कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, हिसाब किताब चुकतु कर जाएंगे। दुनिया में तो कोई उधार करके सारा गड़बड़ करके भाग जाते हैं ना, यहाँ तो यहाँ कोई भाग नहीं सकता है ना, हाँ, वापस घर भी ऐसे नहीं जा सकते। बाबा ने कहा है पूरा हिसाब किताब चुका के कर्मातीत बन के आना है। आज भी कहा ना बाबा ने कर्मातीत बनने की बात, तुम्हारी कल शायद कहा याद नहीं है, पर सिविलाइज्ड होंगे, माना अंदर कोई विकार नहीं रहेगा और शुद्ध दृष्टि वृत्ति विचार स्मृति संकल्प स्वप्न होंगे तो आत्मा कर्मातीत बन सकेगी। और फिर लड़ाई शुरू होगी बाबा ने कहा, वापस घर चलेंगे। तो ये अंत का समय है, हिसाब किताब क्लियर होने का समय, इसलिए धीरज से, हिम्मत से और योग बल से हिसाब चुकाना, ये बाबा ने हमें सिखाया। कई सोचते हैं बाबा कुछ मदद नहीं करता है, हा? मेरे सामने इतनी बातें आती है, पता नहीं बाबा कुछ करता ही नहीं। हिसाब किसने बनाए थे, हमने बनाए थे, बाबा से पूछ के बनाए थे, हाँ, हिसाब हमने बनाए और बाबा उसको मिटाए, हाँ, सिद्धांत क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, जो करेगा सो पाएगा, है ना। हमने हिसाब बनाए हैं, हमें चुकाने हैं। भगवान हमें सही ज्ञान देते हैं, योग सिखाकर एम्पावर करते हैं, हम उनको उनकी श्रीमत पर चलते हैं तो वो हमें मदद करता है, पर चुकाना तो खुद को ही होता है ना। देखो, कोई धनवान घर के हैं, मान लो बीमारी आती है तो भाई अच्छी हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, अच्छे डॉक्टर स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट कराएंगे, है ना। सब दवाइयां, फल जो मतलब चाहिए सब मिलेगा, सेवा करने वाले भी होंगे, पर हिसाब किताब तो मुझे ही चुकाना है, वो तो खुद को ही चुकाना होता है। तो बाबा हमें समझ देता है, शक्ति देता है, हिम्मत रखते हैं श्रीमत पर चलने की, वो मदद करते हैं, पर वो एग्जाम तो हमें ही पास करनी होगी। अगर ये याद हम रखते हैं तो आप ज्यादा हलचल में नहीं आएंगे। मन प्रश्न में नहीं जाएगा, पता है ना, अचल अडोल। अचल अडोल माना हमारी अवस्था, अचल अडोल जो निश्चय, जो सत्य हमने स्वीकार किए हैं, जो श्रीमत हमने स्वीकार की है, जिस भगवान को हमने साथी बनाया है, जो धारणाएं हमने जीवन में की हैं, उसमें अचल अडोल। समय आने पर, बात आने पर ही हमारी दृढ़ता का पता चलता है ना। जब सब कुछ अनुकूल है तब तो हर कोई ठीक चलता है ना, पर जब प्रतिकूल है, विपरीत है, तभी तो परीक्षा आती है, और उसी समय हमें दृढ़ रहना होता है, स्थिर रहना होता है, बाबा में अपना विश्वास निश्चय पक्का रखना है। कई कहते हैं ना कि वैसे मैं बहुत अच्छा चलता हूं, पर बात ऐसी आ गई ना जो अवस्था हिल गई, मन बिगड़ गया, वाणी बिगड़ गई, कर्म बिगड़ गए। बात आती है तभी पता चलता है ना कि धारणा कितनी गहरी है, कहां तक हमने नेचुरल धारणाएं बनाई है। आज बाबा का ज्ञान पढ़ते 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 भी कितने साल हो गए, एक साल, दो साल, पांच साल, दस साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, है ना। नया नया अभ्यास हो तो हलचल होती है, पर अभ्यास हो जाने के, भाई नया नया बिजनेस है तो प्रॉब्लम आते हैं, तकलीफ होती है, कुछ भी नया सीखने में मेहनत लगती है। आप साइकिल सीखते हैं, स्कूटर सीखते हैं, कोई गिरेंगे, चोट भी लगेगी, टूट फूट भी होगी, पर सीख गए फिर इजी, नेचुरल। तो हमारा इजी और नेचुरल क्या हुआ है? कहा ना बाबा ने, आज चेक करो कितने गुण आए हैं, आए हैं और स्थाई कितने हुए हैं। प्रभावशाली गुण कितने हैं। तो ये परिस्थितियां जब आती है तब हमें पता चलता है कि हम किस में पास है। तो एक तो अंत का समय है, परिवर्तन का समय है, ये परिवर्तन का समय है। कलयुग की अति होकर अंत होगा और नई दुनिया आएगी। ये सारा टोटल चेंज का टाइम है। ये सामान्य परिवर्तन का समय नहीं है, वो तो संसार का चक्र बदलता ही रहा है। हर क्षण परिवर्तन होता रहता है, वो तो एक क्रम है। पर अभी जो परिवर्तन का समय है वो तो टोटल चेंज का पीरियड है। आमूल परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन का समय। टोटल अपवित्रता खत्म होगी और टोटल पवित्रता की दुनिया आएगी। हर आत्मा, हर तत्व तमो से सतो बनेंगे। तो परिवर्तन के समय में कहते हैं ना, चेंज इज ऑलवेज पेनफुल। परिवर्तन आता है तो कष्ट होता है ना। देखो, आप जिस प्रकार से हैबिचुएटेड है वैसे ही चलना सहज है, पर उसमें जब चेंज करने की बात आती है तभी तकलीफ होती है। तो ये चेंज का पीरियड है, टोटल हलचल का पीरियड है। और उस हलचल में से ही अचल सत्य बाहर आएंगे, बाकी खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे समय में अपने आप को हमें शांत, स्थिर, अचल, अडोल रखना है। तो अगर हमें बुद्धि में ये रहेगा कि ये परिवर्तन का समय, विकार के अंश वंश खत्म होने हैं और 100% प्यूरिटी की दुनिया आनी है, तो नेचुरली हमारे सामने बातें आएंगी। पर हमें बाबा ने पहले से बताया है, इसलिए मन रिसेप्टिव बन जाता है। कोई भी बात आई, समझो आज कुछ भी होता है, अर्थक्वेक होते हैं, फ्लड आते हैं, अकाल होते हैं, हवा के तूफान आते, कुछ भी प्राकृतिक आपदा आती है या मानव सर्जित आत्मा आपदाएं आती है, आतंकवाद, उग्रवाद, बम ब्लास्ट होते हैं, हम बाबा के बच्चे क्या कहते हैं? हमें बाबा ने पहले से बताया है, हमें बाबा ने पहले से बताया है कि ये सब होना ही है। लोग प्रश्न में चले जाते हैं, हलचल में चले जाते हैं कि ये क्या हो रहा है दुनिया में, ये क्या हो रहा है। उनको हलचल, भय, चिंता हो जाती। इवन मानवीय संबंधों में जो आज परिवर्तन आया है, वैल्यूज कम हो गए हैं। पहले परिवार, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, उसके साथ छोटों का व्यवहार सब अलग था, और आज कितना बदल गए। जिनको पता नहीं है कि ये समय अंत का है, परिवर्तन का है, तो उनको प्रश्न होते हैं कि ऐसे कैसे बच्चे हैं। हमने उसके पीछे इतनी मेहनत की और वो हमारा ही रिस्पेक्ट नहीं रखते, हमारा ही नहीं मानते। हर संबंधों में ये चीज आ रही है ना, पर हमें प्रश्न नहीं होते, हम हिलते नहीं। हमें मालूम है कि अभी समय जो है वो नौ कला का है, एक भी कला नहीं रही, सब गुण खत्म हो गए। बाबा ने कहा ना, लकीर रही है बस, उससे फिर वापस फुल मून बनेगा। नौ कला से सोलह कला बनेगा। तो बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो बाबा की सबसे बड़ी कृपा है। कई सोचते हैं ना कि बाबा तो सिर्फ ज्ञान ही देते, कुछ पैसे भी दे देते, कुछ मकान दे देते, समय पर काम आता। बाबा तो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान देते रहते, पर परिस्थितियां आने पर क्या काम में आता है? ज्ञान ही काम आते। देखो जापान में सुनामी हुई, सेकंड में सब कुछ बह गया, उस समय खुद को संभालने में क्या काम आता है? ज्ञान ही काम आता है। और खुद के दिल दिमाग सलामत है तो हम जीरो से वापस हीरो बन सकते हैं, पर जिनके मन पर इफेक्ट आ जाएगा और शरीर भी डैमेज हो जाएगा, उसके प्रभाव से रोग लग जाएंगे, फिर खुद को समझाने वाला कोई होता है? इसलिए हम बाबा के बच्चे अपनी अवस्था को एकरस, स्थिरियम रख सकते। भगवान ने इतना लंबा समय जो पढ़ाई चलाई है उसका कारण ही ये है कि बाबा ने कुट कुट कर रग रग में ज्ञान की धारणा करा दी। कईयों को होता है ना कि बाबा ने तीन चार बार कहा और विनाश तो कुछ हुआ नहीं, और नहीं होना था तो बाबा ने क्यों विनाश की बात की, कईयों को ऐसा प्रश्न आता है। पर शायद बाबा विनाश की बात नहीं करता, इतना लंबा समय हम आध्यात्मिक पुरुषार्थ भी नहीं कर पाते। इतनी जो लंबे समय की आध्यात्मिक हमारे पुरुषार्थ की यात्रा रही, उसमें समय के सिग्नल ने भी तो मदद की। और जैसा बाबा ने कहा वो हुआ है, हम समझते हैं कि विनाश मानस सब टूट फूट के खत्म हो जाए। भौतिक रूप से टूट फूट विनाश तो अपने आप फॉलो होता है, पर विनाश होने के बेसिक जो रीजंस है, कारण है, वो तो बाबा ने जैसे कहा ऐसे ही हुआ है। वैल्यूज खत्म हुए, चरित्र खत्म हुए, मर्यादाएं खत्म हुई, आपसी प्यार विश्वास खत्म हुए, ये सब विनाश के आधारभूत कारण है। हम बाह्य देखते हैं कि कुछ हुआ कुछ हुआ, पर ये हुआ है, अंदर देखना है कि हरेक आत्मा खाली हो गई। और आज हम जब अंत में पहुंचे हैं तो हम देख भी रहे हैं कि ज्ञान को छोड़ो, एक सामान्य इंसान भी कहता है कि इतना गंदा और गिरा हुआ समाज हो जाएगा, हमने सोचा नहीं था। है कि नहीं ऐसा? हम बाबा के बच्चे जानते हैं कि ये स्थिति दुनिया की ऐसी किस कारण से बनी। देखो, कपड़ा इतना फटता है, उसी समय सिलाई कर लो तो थोड़ा लंबा चलेगा, पर अगर उस समय आपने कुछ नहीं किया तो वो बहुत जल्दी ज्यादा फट जाता है। हमारे वैल्यूज कम हुए, पर आज उसका रिजल्ट आज की जनरेशन में हम देख रहे हैं। हम कहते हैं ऐसे कैसे बच्चे पैदा हुए, पर कारण तो हम ही बने हैं, है ना? हमने थोड़े थोड़े नियम संयम छोड़े, तोड़े, और उस समय हमने उसको माइंड नहीं किया ना, तो आज वो इतना बड़ा कारण दिखाई दे रहा है। तो अंत का समय, परिवर्तन का समय, और हिसाब किताब चुक कर वापस घर जाने का समय। इसलिए बातें आती है, परिस्थितियां आती है, फिकर हो जाए, चिंता हो जाए, ऐसी बातें आती है सामने, पर यही समय है। परिस्थितियां जब आती है वो समय ही है जब हमें ज्ञान को अप्लाई करना होता है, उस समय ज्ञान को यूज करना होता है, उस समय हमें बाबा याद रहे, उनके साथ में, हाथ में, उनकी छत्र छाया में हमारा विश्वास बना रहे। वरना इतना ऊंचा ज्ञान कब अप्लाई करना है? जब बात आती है तभी अप्लाई करना होता है ना। तो हमारा बाबा में और ड्रामा में, देखो दुनिया में भी लोग कहते हैं कि बात ठीक हो जाए उसका अपने तरफ से पूरा प्रयास करो, पर सही प्रयास करने के बाद भी कोई बात ठीक नहीं होती है तो वे भी कहते हैं भगवान पर छोड़ दो। टाइम एंड गॉड आर टू ग्रेट हीलर्स। कहा जाता है कि समय और भगवान ये दो बहुत शक्तिशाली हैं, अपने आप फिर समय आने पर बात ठीक हो जाती है या भगवान की मदद से ठीक हो जाती है, या टाइम जाता है तो धीरे धीरे वो बात का प्रभाव कम हो जाता है। देखो कितना भी बड़ा साइक्लोन आएगा, धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होने लगता है ना, उसकी शक्ति कम होने लगती है। तो बाबा जो कहते हैं ना कि परिस्थिति परिवर्तनशील है, कोई भी परिस्थिति कायम नहीं रहती। आज जो बात आई है वो आज नहीं तो कल जाने ही वाली है, कुछ भी स्थायी नहीं है इस दुनिया। इसलिए बाबा कहते हैं जब परिस्थिति परिवर्तनशील है तो उसको देखकर अपनी स्थिति क्यों बदलते है ना? आप अपनी स्थिति में स्थित रहो, अपने आप परिस्थिति बदल जाएगी, बात धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अपनी स्थिति कौन सी? एक तो मैं स्वयं अचल, अडोल, अविनाशी आत्मा हूं, बाकी सब कुछ हलचल है, शरीर भी हलचल और संसार भी हलचल, बदलने वाली चीजें। इन सब के बीच में अचल अडोल कौन है? अविनाशी, अजर, अमर, शाश्वत, मैं आत्मा स्वयं। बस वो स्मृति की स्थिति पकड़ के रखना है। कहते हैं ना तूफान के बीच में शांति की स्थिति होती है। जब तूफान उठता है ना तो चारों ओर हलचल है पर उसके बीचों बीच साइलेंस होता है, उसको आई ऑफ स्टॉर्म कहते हैं। तो जीवन संसार कलियुग अंत का हलचल है पर उसके बीच में मैं आत्मा स्वयं शांत, स्थिर, अचल, अडोल। ये रोज अभ्यास करना है कि मैं आत्मा शांत, स्थिर, अजर, अमर, अविनाशी, मैं स्वयं ही अचल। दूसरा, अब हमारे साथ कौन है? अब हम अकेले नहीं है, अब हमारे साथ स्वयं भगवान है। जहां हम याद करें बाबा हमारे
साथ है। पिछली सीजन भी बाबा ने हमें वचन दिया था, तुम हिम्मत करेंगे बाप, मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, कोई भी बात आती है तो पहले चारों ओर देखते हैं, कौन मदद करता है, कौन मदद करता है, इसको इसको फलाने को याद करते है ना। जब कोई नहीं मदद करता है फिर हम क्या करते, फिर हम बाबा के तरफ जाते हैं। तो इसको थोड़ी निश्चय कहे, बाबा भी तो देखता है ना कि चारों ओर उसने देख लिया, जब कोई नहीं मिला तब अब मेरे पास आए। तो ये तो बाबा कहेगा ना, वफादारी थोड़ी है। हमें पहला संकल्प क्या आना चाहिए कि बाबा हमारे साथ, निराकार ही हमारा साथी हो सकता है। कहीं सोचते हैं ना कि निराकार के साथ का अनुभव कैसे करें, पर वास्तव में निराकार ही हर क्षण हर स्थान वो ही साथी हो सकता है, शरीरधारी नहीं हो सकता। जो शरीर में बंध गया वो तो लिमिट में आ गए ना, वो हर क्षण शरीरधारी हर स्थान हमारा साथी नहीं हो सकता, निराकार ही हो सकता है। तो कुछ भी हो पहले बाबा याद आए, फिर भले प्रैक्टिकल साकार दुनिया के हिसाब से आप अपने प्रयास करो कोई भी बात को सुलझाने के लिए, पर दिल में अंदर पहले बाबा याद आना चाहिए। तो हम अकेले नहीं है, तो हमारे में हिम्मत रहेगी, मन शांत रहेगा ऑटोमेटिक सॉल्यूशन समाधान बुद्धि में टच होगा। कहते हैं ना, जितनी परिस्थिति बड़ी, जितनी बात बड़ी उतना ही मन शांत स्थिर रहना चाहिए। अगर हमारी स्थिति हलचल परेशान द्वंद मुंज, तो राइट डिसीजन नहीं आएगा। तो ये जो रोज हम अभ्यास करते हैं, शांति में बैठते हैं, शांत स्वरूप को याद करते हैं, हम विशेष तपस्या करते हैं, वो किस लिए करते हैं? ताकि बातें प्रभावित न करें और शांत और स्वस्थ स्थिति से आई हुई बात को ऑब्जर्व करें साइलेंटली और रूट कॉज को पकड़े और निवारण करें। जब हम हलचल में आते हैं तो हमें सॉल्यूशन नजर नहीं आता है, क्योंकि हम ही हलचल में है ना। तो ये बहुत उपयोगी है बाबा की याद और तपस्या का अभ्यास। और रोज 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 अभ्यास करने से हमारी स्थिति बनती है, स्वरूप बनता है। बाबा कहते हैं ना कि समुद्र के किनारे टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर होते हैं, पर रोज सागर की लहरें टकराती रहती और वो घिस घिस के स्मूद हो जाते हैं ना, वो पत्थर गोल गोल बन जाते हैं। तो रोज जो याद करते हैं बाबा को, स्वरूप को, श्रेष्ठ चिंतन करते हैं, तो इससे हमारा वो स्वरूप बनता जाता है, हमारी स्थिति बनती जाती है। और हमें श्रीमत में विश्वास, बाबा की श्रीमत में विश्वास, कि हम बाबा की श्रीमत पर चलते रहे हैं, अपने कर्मों को सत्कर्म बनाते रहे हैं जब से हम बाबा के बने, है ना ऐसा? हाँ, हमें अपने सत्कर्म में और बाबा की श्रीमत में विश्वास होना चाहिए। बाबा की श्रीमत पर हम हैं तो बाबा जवाबदार है। श्रीमत सत्य है और सत्य ही सदा अचल रहता है। बाबा कहते हैं ना, सत्य की नाव हिलेगी डूलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ये श्रीमत में हमारा विश्वास। श्रीमत क्या है? यही तो सत्य है। और हर बात की श्रीमत बाबा ने हमें बताई, जीवन की छोटी 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 प्रैक्टिकल बातों में क्या करना है, ये साकार मुरली हमें सिखाती। ब्रह्मा साधारण मानव से संपूर्ण कर्मातीत कैसे बना, क्या पुरुषार्थ उसने किया, वो साकार मुरली बताती। वो फॉलो करना है और अव्यक्त संपूर्ण स्थिति की ऊंचाई क्या है और वो कैसे पानी है, वो अव्यक्त मुरलियां सिखाते हैं। आप सबका भी अनुभव होगा कि परिस्थिति आई नहीं और बुद्धि में बाबा के ज्ञान से जवाब आ जाता है। आता है ना? हम मूंझ नहीं सकते हैं, हम दुखी नहीं हो सकते। बाबा ने इतना गहरा ज्ञान दिया है हमें कि बात आई नहीं और अंदर से ज्ञान हमें ही समझा देता है, है ना? हमारी स्थिति बिगड़ नहीं सकती और हमें अपने सत्कर्म में विश्वास कि हम बाबा की श्रीमत पर चले हैं, हमने अच्छे कर्म किए, बिगर मतलब हमने गलत काम करके हिसाब नहीं बनाए, हमने लोगों को धोखा नहीं दिया है, हमें खुद के सत्कर्म में विश्वास कि मेरी तपस्या, मेरी साधना, मेरे श्रेष्ठ कर्म कभी मुझे डुबो नहीं सकते, ये खुद में दृढ़ता रहनी चाहिए। तो हमारी स्थिति अचल, अड़ोल, एकरस हम रख सकते हैं। छोटी छोटी बातों में अपसेट हो जाना, बार बार अवस्था को बिगाड़ते रहना, तो वो तो ऐसा है जैसे कि वो बच्चे नहीं मकान बनाते और तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं फिर तोड़ते हैं, घड़ी घड़ी बनाना और घड़ी घड़ी बिगाड़ना, दीवा जलाना बुझ जाए फिर जगाना। बाबा कहते हैं ना, सेंसिबल उससे कहेंगे जब पता चलता है कि दीवा अब बुझने आया है तो उससे पहले ही घी डाल देना, जब लगे अवस्था हिल रही है उसी समय अपने को बाबा के महावाक्यों से, बड़ों के संग से, उनके अनुभवों के मार्गदर्शन से खुद को शक्तिशाली बना ले। और खुद की अवस्था की खुद को वैल्यू, बाबा कहते छोटी छोटी बात में बार बार अपसेट होना, अब तुम ज्ञानी तो आत्माओं को शोभा नहीं देता। हमें अपनी अवस्था की वैल्यू, चीज बड़ी नहीं, परिस्थिति कोई बड़ी नहीं, सबसे बड़ी हमारी प्रॉपर्टी क्या है, खुद की अवस्था। हम अचल अड़ोल हैं, हम ठीक हैं तो सब कुछ ठीक कर लेंगे, है ना। इसलिए छोटी छोटी बातें जो हमारी आपसी होती है, एक दो के अवगुण देखना, कमियां देखना, है ना, छोटी छोटी बातों में बहस हो जाना, हम सब पुरुषार्थी है, कुछ ना कुछ कमी पेशी हम सब में है, हमें दूसरों की इन बातों में न जाकर खुद में एकाग्र रहना। और अगर आपके अपनी अवस्था पर अटेंशन होगा ना, तो हमें फिर जो छोटी छोटी बात होती है ना, जिसमें हम अब तक अवस्था बिगाड़ते रहे हैं, हलचल में आते रहे हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये ठीक मैंने नहीं किया, मुझे इसमें जाने की जरूरत नहीं थी, महसूस होता है। जब आप सूक्ष्म पुरुषार्थी बनते हैं, तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं, तो आपको महसूस होगा कि मुझे इन बातों में ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, ये मेरी जवाबदारी नहीं, मेरा कार्य नहीं, मुझे इसमें मन लगाकर मेरी अपनी शक्ति खर्च करने की जरूरत नहीं। माना जो आप जीवन की मुख्य बातें हैं, हमें उसी पर फोकस रहना है। अपनी अवस्था, हमारा संगठन शक्तिशाली और हमारे घर के घर का दुकान का सेंटर का हमारी ऑफिस का वातावरण रूहानी योग्य। हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत। बेफिकर का अर्थ ये नहीं है कि केयरलेस नहीं, बेपरवाह नहीं, गफलत नहीं। बेफिकर माना केयरफ्री, फिकर ना हो, चिंता ना हो। परंतु स्थिति की शक्ति हो, हर बात का सॉल्यूशन खुद की शक्तिशाली अवस्था है। क्या अच्छा लगता है, हलचल में आना अच्छा लगता है या अच्छा लड़ोल अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लड़ोल अच्छा लगता है ना? बाबा नहीं कहते कि लाइट घड़ी घड़ी जाए आए तो अच्छा लगता है? नहीं, कंटिन्यूअस प्रवाह रहता है तो अच्छा लगता है। घड़ी घड़ी आता जाता है तो हम कहेंगे भी अभी बंद कर दो, जब आवे तब करना, नहीं तो खुद को ही आंख में तकलीफ होती है ना? हमें खुद को हलचल में नहीं लाना है। हमारे अपने अंदर कोई हलचल का कारण नहीं होना चाहिए। ये हमें चेक कर लेना है। और हम बाबा के बच्चे जिस परिवार में रहते हैं, जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, जिनके साथ हम नौकरी धंधा करते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, अब हमसे सबको अपेक्षा है कि इनसे हमें शक्ति मिले। ये योगी लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, अब वो हमसे बल चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं। वो कहते हैं कि आप तो रोज जाते हैं ना योग करने, आप तो डायरेक्ट भगवान से मिलते हैं ना, आप में तो बहुत शक्ति है, आप हमें बल दें, है ना? बाबा के सच्चे पक्के ज्ञानी योगी से हरेक अब ये अपेक्षा रख, और लोग मानते हैं कि हमारे घर में एक तपस्वी है तो हमारी नैया डूब नहीं सकती है, क्योंकि हमारे घर में एक योगी बैठा है कि नहीं? पर ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि हमारे घर में योगी बैठा है, ज्ञानी है, ये हर एक जानते। ये बहुत सेवा करते हैं ये भी जानते, पर अब ये तपस्वी हमारे घर में बैठे, इसलिए अब साधना अभ्यास याद बहुत जरूरी है खुद के लिए और आत्माओं को भी शक्ति देने के लिए, ताकि हम भी स्थिर रहे, हमारे साथी भी स्थिर रहे। तो बाबा को क्या हमें रिजल्ट देना है? हाँ, अच्छा लड़ो ना, हाँ? रोज छोटी छोटी बातें लेकर बाबा के पास रोने नहीं जाना, बाबा कहेगा लो ये आ गया फिर से सुनाने के लिए, ऐसा नहीं। बाबा भी देखकर खुश हो कि ये मेरा शक्तिशाली बच्चा है। ओम शांति। तो हम अभ्यास करेंगे, चले अभ्यास करेंगे, अपना डायरी पर्स बैग साइड में रख दीजिए, दो मिनट खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, हाथ पांव स्ट्रेच कर ले, खड़े खड़े दौड़े, हाँ हल्का हल्का दौड़िए ताकि सारे अंग फ्रेश हो जाए। हम पांच अभ्यास करेंगे, जो जब तक खड़े रह सके खड़े रहे, जब आपको लगे कि थक गई हूं नहीं खड़ी रह सकते हैं तो बैठ जाना, पर साइलेंस से जैसे मैं कहूं ऐसे अभ्यास करना। हम शरीर से भी डायरेक्शन चेंज करेंगे। पहला अभ्यास स्व में स्थित हो जाना, मैं स्वयं ही अचल अडोल हूं, मैं आत्मा सत्य हूँ, नित्य हूँ, अजर अमर अविनाशी, शरीर हलचल है। जी आप बैठ जाइए। मैं आत्मा अचल अडोल, स्वयं में ही मस्त हो जाए, मुझे अपने शांत शुद्ध दिव्य स्वरूप में ही आनंद आ रहा है। दो जितना देहभान से न्यारी। स्वामी मस्त रहती हूँ। परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त हो जाती है। जैसे ही देहभान से मैं न्यारी होती हूँ, मैं ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देख सकती हूँ। अब राइट साइड घूम जाइए बिल्कुल शांति से। दूसरा अभ्यास बाबा में मग्न हो जाना। मेरा बाबा परम सर्वोच्च है। अपरिवर्तनशील, एक रस है। सदा पावन, सदा मुक्त, सदा कल्याणकारी है। मुझ आत्मा के अविनाशी साथी है। मेरे कल्याणकारी बाबा रोज आप में मन बुद्धि लगाने से नित्य याद करने से मैं आत्मा आपकी संतान मैं भी एक रस अचल अडोल शुद्ध शुभ शक्तिशाली बनती जाती है। राइट साइड घूम जाए, तीसरा अभ्यास इस वर्ल्ड ड्रामा में अपना पार्ट ट्रस्टी भाव से निमित्त भाव से प्ले करना बजाना। मैं निमित्त हूँ, बाबा मालिक है, बाबा की श्रीमत अनुसार जब मैं अपना लौकिक अलौकिक पार्ट प्ले करती हूँ, मैं बिल्कुल लाइट हल्की रहती हूँ। मेरा हर कर्म मैं सही बना सकती हूँ। मैं बाबा की तरफ से निमित्त बनी ट्रस्टी आत्मा हूँ। मुझे श्रीमत अनुसार चलना है, मनमत खत्म करनी है, मुझे मालिक के वफादार रहना है। दूसरों के पार्ट को साक्षी होकर देखना है, अंतर में सबके लिए शुभ भावना शुभकामना न्यारा और प्यारा। धीरे से राइट साइड घूम जाए, चौथा अभ्यास। संगम के अंत में अब मेरा पार्ट मास्टर दाता रहीम दिल कल्याणकारी प्यारे बाबा ने मुझे सब कुछ दिया है, सर्व खजानों से भरपूर संपन्न किया है। अब ये अलौकिक प्राप्तियां, ये रूहानी अनुभूतियां सबको देनी है। आत्माओं को प्रकृति पशु पंछी जगत को सबको मनसा दान करना है। मुझे अपने विचारों से वाइब्रेशन से मन के सूक्ष्म भाव और भावनाओं से स्मृति और वृत्ति से चेहरे और चलन से देना है शांति, शक्ति, खुशी, मास्टर दाता हूँ। राइट साइड घूम जाए। पांचवा अभ्यास, अभी की लगन, एक ही धुन, बाबा के साथ वापस घर जाना है। और नई दुनिया में आना है। ड्रामा का यह चक्र पूरा हुआ। बाबा आए हैं, मुझे पावन बनाकर वापस घर ले जाने। बैठ जाए।